ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन संपन्न, बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने थाईलैंड की ऐतिहासिक यात्रा और सफल शिखर सम्मेलन की प्रशंसा। प्रधानमंत्री ओली और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैंकॉक में महत्वपूर्ण वार्ता। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। उच्च अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को जेल भेजने का दिया आदेश। हवा की गति बढ़ने से काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण का स्तर गिरा, नागरिकों को सांस लेने में मिली राहत। और चीन ने अमेरिकी सामान पर लगाया 34% अतिरिक्त आयात शुल्क। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने थाईलैंड की अपनी औपचारिक यात्रा को ऐतिहासिक और बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के छठे शिखर सम्मेलन को सफल बताया है। स्वदेश लौटने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ओली ने आज थाईलैंड के प्रीतिवानो मयांग स्थित नेपाली दूतावास के कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता के क्रम में दोनों देशों के बीच संबंधों के विस्तार पर और मजबूती आने की बात कही। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाली दूतावास के लिए अपनी ही जमीन पर संचालन होने पर खुशी जताते हुए आगामी दिनों में इसके लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। आज शाम दूतावास द्वारा प्रधानमंत्री ओली के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में उनके साथ भ्रमण दल के सदस्यों और थाईलैंड में रह रहे नेपाली समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ओली कल स्वदेश वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन के मुख्य विषय और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य नेपाल की समृद्धि, नेपाल सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ओली ने बताया कि बिम्स्टेक सम्मेलन के तीन आधार स्तंभ समृद्धि, लचीलापन और खुलापन नेपाल के विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ओली ने जलवायु परिवर्तन को मानवता के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि हिमालयी एशिया के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। उन्होंने पहाड़ों की दुर्दशा और पहाड़ महासागर के बीच के संबंध को उजागर करने के लिए मई 2024 में सगरमाथा संवाद के पहले संस्करण का आयोजन करने की योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री ओली ने बिम्स्टेक को दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सहयोग का एक अनूठा उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये संगठन 1.8 अरब से अधिक लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने थाईलैंड की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 3 वर्षों से बिम्स्टेक प्रक्रिया को दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने में थाई नेतृत्व की भूमिका सराहनीय रही है। इस शिखर सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा और श्रीलंका के प्रधानमंत्रियों एवं प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं ने भी संबोधन किया। बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन आज बैंकॉक दृष्टि पत्र 2030 जारी करके संपन्न हुआ। सम्मेलन में व्यापार विस्तार, कनेक्टिविटी नेटवर्क और मानव सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए समृद्धि, लचीलापन और खुलापन के नारे के तहत 6 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैंकॉक स्थित मंदारिन ओरिएंटल होटल में करीब 45 मिनट तक चली इस वार्ता को प्रधानमंत्री ओली ने सकारात्मक और रचनात्मक बताया। दोनों नेताओं ने नेपाल भारत संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विशेष रूप से ऊर्जा और कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक आदान प्रदान, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग। पीएम मोदी ने कहा कि भारत नेपाल के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। पीएम ओली ने ट्वीट कर कहा कि बिम्स्टेक एजेंडा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये वार्ता महत्वपूर्ण थी। पीएम मोदी ने लिखा कि नेपाल के साथ हमारी मित्रता को नई ऊर्जा मिली है। इसी दौरान बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे ने प्रधानमंत्री ओली से शिष्टाचार भेंट की। बिम्स्टेक सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है। ये वार्ता ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश क्षेत्रीय सहयोग को नई गति देने के लिए प्रयासरत हैं। उच्च अदालत तुलसीपुर के बुटवल इजलास ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को रूपंदेही सुप्रीम सहकारी ठगी और संगठित अपराध मामले में जेल भेजने का आदेश दिया है। रूपंदेही जिला अदालत ने पहले लामिछाने को 1 करोड़ रूपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उच्च अदालत के न्यायाधीश रमेश ढकाल और स्वीकृति पराजुली की संयुक्त पीठ ने इस फैसले को पलटते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। ये मामला सुप्रीम सहकारी संस्था में धोखाधड़ी और संगठित अपराध से जुड़ा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए आगे की जांच के लिए लामिछाने को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। इस मामले में पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी को निचली अदालत द्वारा जेल भेजने का आदेश को उच्च अदालत ने बरकरार रखा है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने अब से 3 कुने और आसपास के क्षेत्र में किसी भी प्रदर्शन करने नहीं देने का सरकार को निर्देश दिया है। समिति की आज हुई बैठक में 3 कुने और आसपास के क्षेत्र में प्रदर्शन न करने देने, चैत 15 को पूर्व राजतंत्रवादियों के प्रदर्शन में आपराधिक गतिविधियों को में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, सभी को कानूनी दायरे में लाने, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय और गृह मंत्रालय को निर्देश दिया गया है। समिति ने नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस को संसाधन पर्याप्त बनाने के लिए उचित बजट की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। ये जानकारी समिति के सभापति राम हरि खतिवड़ा ने दी। बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक ने चैत 15 गति को 3 कुने घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सरकार की प्रतिबद्धता की जानकारी दी। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि 3 गुने घटना संविधान को खत्म करने और व्यवस्था को उलटने के इरादे से पूर्व राजतंत्रवादियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन किए जाने के कारण जनधन की क्षति हुई है। घटना में मारे गए सवीन महर्जन और सुरेश रजक के परिवारों को 10-10 लाख रूपये की राहत राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और राशि निकासी की प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी घायलों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था भी की गई है। बैठक में सांसदों ने 3 कुने जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आंदोलन की अनुमति न देने, घटना की निष्पक्ष जांच करने, सुरक्षा निकायों को प्रभावी बनाने, संविधान विरोधी गतिविधियों को रोकने जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे। आज हवा की गति बढ़ने के कारण काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार काठमांडू अब दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। कल की तुलना में सुधार। बीते दिन काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया था, जहां एक्यूआई 348 तक पहुंच गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन ने ट्रंप के टैरिफ के जवाब में अमेरिकी चीजों पर भी 34% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते चीन पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अपना दूसरा कार्यकाल संभालते ही उन्होंने चीन पर पहले ही 20% टैरिफ लगा दिया था, यानी कुल मिलाकर अब चीन पर 54% टैरिफ लगाया जा चुका है। यानी चीन के जवाबी टैरिफ की दर ठीक उतनी ही है जितना ट्रंप ने चीन पर इस हफ्ते टैरिफ लगाया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विम्सटेक का 6वां शिखर सम्मेलन संपन्न, बैंकॉक घोषणा पत्र 2030 जारी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने थाईलैंड की ऐतिहासिक यात्रा और सफल शिखर सम्मेलन की प्रशंसा। प्रधानमंत्री ओली और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैंकॉक में महत्वपूर्ण वार्ता, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। उच्च अदालत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को हिरासत में लेने का दिया आदेश। हवा की गति बढ़ने से काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण का स्तर गिरा, नागरिकों को सांस लेने में मिली राहत और चीन ने अमेरिकी सामान पर लगाया 34% अतिरिक्त आयात शुल्क। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।